नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। अरबपति कारोबारी गौतम अडानी ने शुक्रवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की और द्वीप राष्ट्र में एक हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। श्रीलंका में अडानी समूह पहले से ही एक कंटेनर टर्मिनल और 500 मेगावाट की पवन परियोजना विकसित कर रहा है। अडानी ने पहले से जारी और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए विक्रमसिंघे से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट किया, राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से कोलंबो बंदरगाह के पश्चिमी कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने, 500 मेगावाट की पवन योजना और हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए हमारी नवीकरणीय ऊर्जा विशेषज्ञता का विस्तार करने सहित श्रीलंका में जारी विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा के लिए मुलाकात की। आदित्य बिरला समूह की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 7% बढ़कर 1688 करोड़ रुपए हो गया। घरेलू बाजार में बिक्री बढ़ने से कंपनी को लाभ हुआ। कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजारों को दी गई जानकारी में कहा कि एक साल पहले की समान तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 1584 करोड़ रुपए था। आलोच्य तिमाही में अल्ट्राटेक सीमेंट की शुद्ध बिक्री बढ़कर 17519 करोड़ रुपए हो गई, जबकि साल भर पहले ये 15007 करोड़ रुपए थी। अप्रैल जून तिमाही में कंपनी ने घरेलू बिक्री में 20% की तगड़ी वृद्धि हासिल की। इस तिमाही में उसके संयंत्रों ने 89% क्षमता से काम किया। सीमेंट कंपनी ने कारोबारी परिदृश्य के बारे में कहा कि सभी क्षेत्रों में सीमेंट की मजबूत मांग देखी जा रही है और अगले साल आम चुनावों को देखते हुए ढांचागत व्यय बढ़ने की संभावना से मांग में और वृद्धि की उम्मीद है। निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी HDFC लाइफ का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 15% बढ़कर 415 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने शुक्रवार को बयान में कहा कि बीते वित्त वर्ष 2022-23 की अप्रैल जून तिमाही में कंपनी को 361 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। HDFC लाइफ की कुल प्रीमियम आय 16% बढ़कर 11673 करोड़ रुपए रही, जो एक साल पहले इसी अवधि में 10050 करोड़ रुपए थी। बीमा कंपनी का पूंजी जोखिम अनुपात 200% रहा, जो एक साल पहले जून तिमाही में 178% था। कंपनी के निदेशक मंडल ने प्रति शेयर 1.90 रुपए का लाभांश देने की सिफारिश की। इसके लिए कंपनी को कुल 408 करोड़ रुपए भुगतान करने होंगे। ये शेयर धारकों की मंजूरी पर निर्भर है। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 36.48% की गिरावट के साथ 1964 करोड़ रुपए रहा। इसका मुख्य कारण उसकी आय का कम होना रहा। कंपनी ने BSE को दी जानकारी में बताया कि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में उसे 3092 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल जून अवधि में एकीकृत कुल लाभ गिरकर 7564 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 9697 करोड़ थी। समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी का खर्च घटकर 4954 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल समान अवधि में 5025 करोड़ रुपए था। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों ने GST के संग्रह और हस्तांतरण का सफल उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि राज्य वित्त पर RBI की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर के 8 राज्यों ने GST में 27.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की। सीतारमण केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के एक कार्यक्रम में बोल रही थी। इस कार्यक्रम का आयोजन विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार देने के लिए किया गया था। मंत्री ने कहा कि असम GST अधिनियम पारित होने के 4 दिन बाद इसकी पुष्टि करने वाला पहला राज्य था और तब से कर संग्रह में 12 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, GST इस बात का प्रतीक है कि आजादी के बाद भारत एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था बनाने की दिशा में क्या कर सकता है, जिसके तहत केंद्र और राज्य न सिर्फ राजस्व संग्रह के लिए मिलकर काम करेंगे बल्कि अर्जित धन का हस्तांतरण एक स्वीकार्य फॉर्मूले के तहत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में युवाओं के लिए रोजगार की अपार क्षमता है। उन्होंने इस अर्थव्यवस्था की क्षमताएं भुनाने के लिए वैश्विक स्तर पर नए जमाने की नीतियां बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। मोदी ने G20 के देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों के इंदौर में आयोजित बैठक में वीडियो संदेश के जरिए कहा, COVID-19 के प्रकोप के दौरान लचीलेपन के रूप में उभरी गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में खासकर युवाओं के लिए फायदेमंद रोजगार सृजन की खासी क्षमता है। ये अर्थव्यवस्था महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त कर सकती है। एयर इंडिया और CFM इंटरनेशनल ने 400 कम चौड़े विमानों के नए बेड़े के लिए लीप इंजन के ऑर्डर को अंतिम रूप दे दिया। ये इंजन 210 एयरबस A320, A321neo और 190 बोइंग 737 मैक्स विमानों को शक्ति प्रदान करेंगे। CFM ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा, दोनों कंपनियों ने एक बहुवर्षीय सेवा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जिसमें एयरलाइन के लिए इंजनों का पूरा बेड़ा शामिल होगा। इस ठेके के बारे में सबसे पहले फरवरी में घोषणा की गई थी। एयर इंडिया 2002 से CFM की ग्राहक रही हैं, जब उसने CFM56-5B इंजन से चलने वाले A320neo विमान का परिचालन शुरू किया था। एयर इंडिया के CEO और प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन ने कहा, हमें CFM के साथ एक बड़े सौदे की खुशी है जो भविष्य में हमारी वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।